अगला शीर्षक है बिहारी और घनानंद। बिहारी और घनानंद दोनों ऋतिकाल के दो भिन्न भिन्न दृष्टियों के कवि हैं। दोनों ऋति के बंधनों से मुक्त हैं क्योंकि न तो बिहारी ने नायक नायिका भेद रस अलंकार आदि के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और घनानंद और ना ही घनानंद ने, पर ऋति के प्रभावों से कोई मुक्त नहीं है। ऋति को एक दृष्टिकोण मानने पर ही बिहारी को ऋतिबद्ध और घनानंद को ऋतिमुक्त कहा जा सकता है। बिहारी अभिजात्य रुचि के कवि थे, सामंती अभिजात्य के। ऋतिकाल के किसी भी कवि का व्यक्तित्व इतना निर्लेश और तटस्थ नहीं था। लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मतिराम, देव, पद्माकर आदि में भी बिहारी की सी तटस्थता और निर्व्यक्तिकता नहीं थी। इस दृष्टि से वे ऋतिकाल के अकेले कवि हैं। केवल उन्हीं की रचनाएं क्लासिकल श्रेणी में रखी जा सकती हैं। मतिराम, देव और पद्माकर में व्यक्तिकता का स्पर्श था ही। ऋतिबद्ध कवियों से संबद्ध कवियों में देव में सबसे व्यक्तिकता और अनोखापन दिखाई देता है, लेकिन घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि की रचनाएं उनके भोगे हुए जीवन की कलात्मक परिणतियां हैं। इनमें भी घनानंद का दर्द सबसे अधिक तीखा और गहरा है। इन दोनों कवियों के काव्यों में उनके व्यक्तित्व का पूर्णतः प्रतिफलन हुआ है। बिहारी की नागर रुचि ने भाव संपदा पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना बाह्य परिस्कृति और पूर्णता पर। नायिका के रूप, कांति, अभिजात्य मार्दव आदि का जो वर्णन बिहारी ने प्रस्तुत किया है वह निर्विकार और तटस्थ है। हाव अनुभाव की क्रीड़ा, चित्रों की रेखाएं बिहारी को एक सचेत और कुशल निर्माता सिद्ध करती है। राजाओं और सामंतों ने वस्तु तथा चित्रकला में जिस कारीगरी को प्रश्रय दिया है वह बिहारी के काव्य में भी अवतरित हो उठी है। जाहिर है कि उनमें स्थापत्य और उसके शिल्प का महत्व अधिक है और अनुभूति का कम है। घनानंद ने प्रेम की पीड़ा को भोगा है और उसे काव्य में बांध दिया। प्रेम निरंतर पीड़ित रहने की प्रक्रिया है। इसकी दो ही परिणतियां हैं, पीड़ा का आयोग या उसकी कलात्मक निर्मिति। घनानंद के दर्द ने ही उसे कवि बनाया। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। मध्यकाल के परिवेश में इस युक्ति का बहुत अधिक महत्व है। रीतिमार्गी कवियों ने पंडितों, प्रवीणों, राजाओं, महाराजाओं के लिए राजसभा में बड़प्पन पाने के लिए कविताएं लिखी। घनानंद की कविता स्वतः स्फूर्त है। इस तरह की कविता के लिए पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसीलिए घनानंद के काव्य का जो रूप है वही वस्तु है, या जो वस्तु है वही रूप है। ऋतिबद्ध कवियों का वर्ण और वर्णन अलग अलग किया जा सकता है। उनकी रचनाओं की वर्णन पद्धति अलंकार योजना एक पूर्व निर्दिष्ट वर्णी का निर्देश करती है, किंतु घनानंद में वर्ण और वर्णन एक रूप और अभिन्न है। भाषा काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, फिर भी भाषा के माध्यम से अनुभूतियों को पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाषा छलनामयी है, लेकिन भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा का माध्यम ग्रहण करना अनिवार्य होता है। घनानंद को इसका बोध था। अक्षरे मन को हरे, बहुरी अक्षर ही भावे, रूप अक्षरातीत ताही अक्षरे बतावे, तत्व बोध बौरानी में अक्षर गति अक्षर लहे। अक्षर मन को छलता भी है व उसका सहायक भी है। रूप का सम्यक बोध अक्षर द्वारा संभव नहीं है, किंतु उसके अतिरिक्त वह कौन माध्यम है जो उसे उजागर कर सकता है। पागलपन में ही समाधि सी स्थिति में अक्षर की गति पहचानी जा सकती है और काव्य तत्व का बोध हो सकता है। भाषा के संबंध में घनानंद ने जो बात उठाई है वह आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक चिंतन के मेल में है। भाषा इतनी घिस गई है, वह इतनी वितर्कपूर्ण हो गई है कि उसमें भावाभिव्यक्ति में बाधा पड़ती है। कवि उसकी जड़िमा को तोड़कर उन अर्थों को भी संकेतित करता है जो भाषातीत है। भाषातीत अर्थ की पकड़ बिहारी में नहीं है। बिहारी का काव्य ध्वनि काव्य है, किंतु उसमें भी कवि ने व्यंजना की परिपाटी बद्ध सरणी को ही अपनाया है। इस भाषातीत अर्थ की पकड़ वही कर सकता है जो भाव भीना हो, जो प्रेम में पागल हो। बिहारी के काव्य को समझने के लिए काव्यशास्त्रीय नियमों और रूढ़ियों की अवगति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हाव भाव हेला, नायिका भेद, अनुभावों के रूप रंग से परिचित होने पर भी अर्थोद्घाटन हो सकता है। किंतु घनानंद की कविताओं को समझने की पात्रता उसी में है जिसने हिये आखिन नहीं की पीर तकी। संभवतः अपनी व्यवस्थित और परंपरा भुक्त परिपाटी के कारण ही बिहारी सतसई राज दरबारों में समादृत होकर राजकुमारों के पाठ्यक्रम में दाखिल कर ली गई। आज भी उसकी पढ़ाई के मूल में शास्त्रीय व्यवस्थाओं का उद्घाटन ही मुख्य है। सतसई में पांडित्य उभरा है, अनुभूति कम। घनानंद अनुभूति के कवि हैं, व्यक्तिक अनुभूति के। इनकी प्रेम की पीढ़ सूफियाना ढंग की है। यह भी सही है कि उन पर फारसी काव्य का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव केवल सहायक उपकरण है। उनकी पीड़ा अपने आप इतनी गहरी और मार्मिक है कि पाठक को हिला देती है, मूव करती है। बिहारी पर भी फारसी का प्रभाव है, किंतु इसे हम फारसी का मैनरिज्म कहेंगे। बिहारी इस मैनरिज्म से ही प्रभावित है। फारसी के अप्रस्तुत खेल, खिलवाड़, वियोग परक, उहात्मक उक्तियाँ मैनरिज्म के ही अंतर्गत आएंगी। इसके पाठक मूव नहीं होता, चमत्कृत होता है। यह चमत्कार ही उनकी कविता का केंद्र बिंदु है। प्रेम का स्वरूप। बिहारी प्रेम को चौगान का खेल समझते हैं। इस चौगान के खेल में दांव पेच, लुका छिपी आदि से जीत होती है, किंतु घनानंद का प्रेम तो निरंतर तपता रहता है। इस ताप, व्यथा, पीड़ा, उदासी, आकुलता का नाम प्रेम है। यह किसी परंपरा में नहीं बंधा है, निर्बंध है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम कट प्रेम है जो बुद्धिजन्य और बुद्धिगम्य है, किंतु घनानंद का प्रेम दर्द से उत्पन्न है और उसी से गम्य भी है। नेह कथें सठ नीर मत हैं, हठ कै कठ प्रेम निबाह हैं। क्यों घन आनंद भीजय सुजाननी, यों अमिले मिलिबो फिर चाहें। प्यार के स्वरूप का एक चित्र अज्ञे ने पेश किया है। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि ये ही सब चीजें तो प्यार है। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आरती अननुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जागकर सहसा पहचाना कि जो मेरा है वही ममेतर है। घनानंद की प्रेमानुभूति कुछ कुछ इसी तरह की है। समस्त रीतिबद्ध रीतिमुक्त कवियों में घनानंद का प्रेम अपने अनोखेपन के कारण अद्वितीय है। यह अद्वितीयता उनके व्यक्तिगत प्रेम के पूर्ण स्वीकार में निहित है। उनके भीतर के भक्त ने आध्यात्मिक प्रेम को उसी में सन्निहित कर लिया। यह प्रेम जगह जगह आध्यात्मिक होकर सूफियों की रहस्य चेतना से अभिमंडित हो जाता है। रूप चेतना निर्व्यक्तिक व्यक्तिक। बिहारी की रूपचेतना वस्तुनिष्ठ है और घनानंद की विषयनिष्ठ। बिहारी के अधिकांश रूपचित्र काव्यशास्त्रीय परिपाटी के अनुरूप हैं। उन्होंने पिटे हुए उपमानों के सहारे ही रूपाभिव्यक्ति की है, वही मीन, मृग, कदली, चंद्र आदि। वस्त्राभूषणों के संदर्भ में जो चित्र उभरे हैं वे अवश्य जगरमगर करते हुए दिख पड़ते हैं, किंतु ये सभी चित्र स्वनिरपेक्ष होने के कारण तन्मयी भवन की योग्यता से रिक्त हैं। रूप चित्रों के दो उदाहरण देखिए। सहज सत पंचतोर या पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लौ जगमगाती तन ज्योति। ये बिहारी की पंक्तियाँ थी। अब घनानंद की पंक्तियाँ देखिए। झलकय अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छोय। हंसी बोलन मैं छवि फूलन की बरसा, उर उपरी जाती है हुए। लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली द्वय। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिह मनोरूप अभ्य धर चवे। उपर्युक्त उदाहरणों में दोनों कवियों को रूप चेतना के दर्शन होते हैं। बिहारी ने जल चादर के दीप से नायिका की तन दुति को बिंबित करने का प्रयास किया है। पंच तोलिया साड़ी में छलकती हुई उसकी ज्योति में आभा प्रत्यक्षीकृत होती है। इसके द्वारा वह नायिका का समग्र सौंदर्य नहीं व्यंजित कर पाता। घनानंद नायिका के समग्र सौंदर्य को उसकी संपूर्ण प्रभावान्विति में ब्यौरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं। गोरा मुख अपने आत्यंतिक सौंदर्य में झलक उठता है। अनुराग से छकी आंखें कानों तक फैली हुई विराजमान है। वह हंस कर बोलती है तो आंचल में बरसते हुए फूलों की छवि छा जाती है। हवा के झोंकों में लहराती हुई चंचल लट उसके कपोलों के साथ खेल रही है। प्रत्येक अंग से कांति की तरंगे उठ रही हैं। लगता है कि उसका रूप धरती पर छू पड़ेगा। इस प्रभावान्विति को घनानंद ने जिस रूप में पकड़ा है वह उन्हें अन्य कवियों से अलग कर देती है। इस वैशिष्ट्य को घनानंद की भाषा में ब्यौरा कहा जाएगा। बिन विवेक गुंदोस मूढ़ कवि ब्योरिन बोले। एक दूसरे स्थान पर भी उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, उर गति ब्योरिबे कौ सुंदर सुजान जू कौ। इससे कदाचित उनका अभिप्राय यह है कि एक प्रसंग की सारी विशेषताओं का ब्यौरा देना, लेकिन एक विशेषता का दूसरी विशेषता से भेद करना भी आवश्यक है। इस तरह उनके वर्तन में संश्लिष्टता आ जाती है। मुखमंडल का गौर वर्ण, आँखों का स्फालन, हंसकर बोलने की छवि, कपोलों पर क्रीड़ा करती हुई चटुल लट, गले का दोलरा मोतियों का हार और अंगों की धुति के ब्यौरे से सौंदर्य का समग्र बोध कराया गया है। एक ब्यौरा दूसरे से अलग है, प्रत्येक की अपनी विशेषता है। इस ब्यौरे को संयोजित करना कवि की प्रतिभा पर निर्भर है। वस्तुतः यह सौंदर्य विषय मूलक है और अनुभूति सम्मिलित है और उसने सहज ही आकार ले लिया है। संयोग वियोग, पार्थक्य और अपार्थक्य। प्रेम में संयोग का सुख और वियोग का दुख होता है। सामाजिक व्यवस्था में इसके दोनों रूप दिखाई देते हैं। काव्यशास्त्र में भी इनका विस्तृत उल्लेख है। प्रेम का एक दूसरा रूप भी होता है जिसमें प्रेमी के पल्ले केवल वेदना है, केवल बेचैनी पड़ती है। इस प्रेम में मन को विश्राम नहीं मिलता, ना संयोग में ना वियोग में। उसके लिए दोनों समान हैं। बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। बिहारी ने संयोग वियोग को अलग अलग कोठियों में रखकर देखा है। घनानंद के प्रेम में संयोग वियोग का अपार्थक्य है। बिहारी ने संयोग वर्णन के लिए शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण किया है। संयोग का मूलाधार शरीरी आकर्षण है। इससे अनेक प्रकार की भंगिमाओं, चेष्टाओं, वाचिक और मानसिक विकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नायिका कभी अपना घूंघट डाल देती है, कभी झुकती है, कभी इतराती है, कभी चोर मिहिचनी का खेल होता है, कभी नायक छल से नायिका की छाती छू लेता है, कभी दोनों की आँखें लड़ती हैं। नायक नायिका को महावर लगाता है, उसकी वेणी गूंथता है। घनानंद का प्रेम विषम प्रेम है। इसमें प्रेमी की आसक्ति अत्यंत प्रगाढ़ है, किंतु प्रिया आसक्ति अनासक्ति के परे है। इस गहन प्रेम की एक ही परिणति है, निरंतर एक प्रकार की ज्वाला में तपना खपना। जब कभी प्रिय के दर्शन होते हैं तब भी वियोग संग नहीं छोड़ता। साधन ही मरिय भरिय अपराधिनी बाधनी के गुंजावत, देखे कहा सपनों हूँ न देखत, नैन यो रैन दिना झर लावत। जो कहूँ जान लखे घनानंद तो, तन नेकू न अवसर पावत, कौन वियोग भरे असुआ जू संयोग में आ गई देखन धावत। उनका प्रेम अनिर्वच और दुस्तर है। उसमें गहरी आकुलता, मर्म भेदी व्यथा और आर्तता का ऐसा आवेग है जो सामाजिक नैतिकता के रूढ़ बंधनों तथा रीति के व्याकरण को एक साथ तोड़ देता है। आवेग के हाहाकार का एक दृश्य देखिए। अंतर हों किंधव अंतर हों, दृग फारी फिरौ की अभागिन भिरौ, आगी जरौ आकी पानी परौ, अब कैसी करौ हिया का विधि धिरौ। ज्यो घनानंद ऐसी रुचि तो कहा बस है, अहो प्राणसी पीड़ों पाऊ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसों की आकाश ही चीरों। अलंकार और अलंकार्य। अलंकार और अलंकार्य का जो भेद रुद्रट ने किया है वह काव्य के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। अलंकार्य को सायास अलंकृत किया जाने लगा। अलंकारों के विनियोग में कवि अपनी निपुणता का परिचय देने लगे। बिहारी ने अलंकारों के प्रयोग में जो कौशल दिखाया है उसमें अद्भुत साफगोई है। किसी किसी दोहे में उनके अलंकारों को इस तरह से गूंथ दिया गया कि कहीं पर उलझन नहीं आ पाई है, किंतु घनानंद में अलंकार और अलंकार्य का भेद मिट गया है। अलंकार्य और अलंकार में अद्भुत तद्रुपता आ गई है। उनका अलंकार अलंकार्य से इतना अभिन्न है कि वह शोभा कर धर्म ना होकर स्वयं शोभा बन जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, देखिए दशा असाध अखियां निपेटतनी की, भस्मी बिथा पै नित लंघन करती है। घनानंद जान सजियनी कौ, सपने बन पाई खोवती हैं, न खुली मुंदी जानी पर है, कछु ये दुखहाई जगे पर सोवती हैं। सब में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास घनानंद का सबसे प्रिय अलंकार है। यूं उपमा, उत्प्रेक्षा, यथासंख्य, विभावना आदि अलंकार भी उनमें मिलते हैं, पर अधिकांश कविताओं में विरोधाभास ही दिखाई पड़ता है। बिहारी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, यद्यपि उनकी सतसई में अलंकारों का अंबार लगा हुआ है। बिहारी की एक उत्प्रेक्षा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पड़ो प्रभात। इस अलंकार द्वारा बिहारी ने अत्यंत उत्कृष्ट बिंब प्रस्तुत किया है। यहाँ अलंकार काव्य के शोभाकर धर्म के रूप में आया है। उत्प्रेक्षा द्वारा वे एक चमक की सृष्टि करते हैं जो प्रस्तुत के स्पष्ट करने, शोभन बनाने और उत्कृष्ट गुण धर्मों से युक्त करने में सहायक सिद्ध होता है। सांवले कमल के समान शरीर वाले कृष्ण का पीठपट ओढ़कर सोना अलंकार है। प्रातःकालीन आतप से शोभित नीलमणियों का सैल अलंकार है। घनानंद के अलंकार अपृथग्यत्न निर्वर्त्य हैं, अर्थात उनकी कविता में अलंकार और अलंकारी का भेद प्रायः नहीं मिलता। विरोधाभास के उपर्युक्त उदाहरणों में अलंकारी और अलंकार को पृथक नहीं किया जा सकता। इसे अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए बिहारी का भी एक विरोधाभास अलंकार उद्धृत किया जा सकता है। लही रति सुख लगी है, गरे लखी लजौ ही नीठी, खुलत न मो मन बंधी रही वह अध खुली डीठी। यहाँ पर मो मन बंधी रही वह अध खुली डीठी में केवल चमत्कार है, भावों की समृद्धि से में इसका कोई योग नहीं है। कवि अध खुली को बांधकर शब्द क्रीड़ा करता हुआ प्रतीत होता है, पर घनानंद के विरोधाभास और अनुभूति एक हैं। अपनी गहन पीड़ा को वह इसी तरह व्यक्त करता है। यहाँ अलंकारी और अलंकार एक हो गए हैं। अलंकार उसकी रचना प्रक्रिया के अंग हैं, अलंकार उसकी काव्यानुभूति की बुनावट का प्रमुख सूत्र है। इस संदर्भ में वामन का कथन सौंदर्यम अलंकार अपनी चरितार्थता पा लेता है। उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, मैं उजरनी बसी है विरोधाभास का उदाहरण है, पर यह संपूर्ण अभिव्यक्ति का अनिवार्य अंग है। जो अलंकार है वही अलंकारी भी है। भाषा शैली, बिहारी और घनानंद दोनों ने ब्रज भाषा को संस्कृत परिष्कृत किया है। उनकी भाषागत परिनिष्ठता को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा व्याकरण के लिए उन दोनों कवियों की रचनाओं को आधार बनाने का सुझाव दिया है, पर व्याकरण सम्मत भाषा और काव्य भाषा में अंतर होता है। बिहारी की वस्तु पर एक दृष्टि और परंपरा अनुमोदित भाव उनकी भाषा को भी बहुत कुछ परंपरा मुक्त ही बनाए रखते हैं, किंतु घनानंद के लिए भाषा एक समस्या के रूप में आई। यद्यपि वे ब्रजभाषा प्रवीण थे, फिर भी भाषा की अपूर्णता और अक्षमता से अवगत थे। वे सांचे में ढले हुए नायक नायिका, दूती दूत आदि को भाषाबद्ध करने वाले कवियों में नहीं थे। न तो आगे के कवियों को रिझाने की उनको चिंता थी और न उन्हें कविताई के प्रसिद्ध होने पर राधिका कन्हाई के सुमिरन का बहाना खोजना था। उनके व्यक्तित्व की संरचना और विन्यास कुछ अजीब तथ्यों से निर्मित थी। उनकी प्रेम वेदना में सूफियों जैसी प्रेम की पीर थी, फिर भी वह उनसे भिन्न थी। मीरा का अनिर्वचनीय दर्द भी उनको मिला था, पर वह भक्त का भगवान के प्रति दर्द नहीं था। बोधा और ठाकुर के व्यक्तिगत प्रेम की अनन्यता उनकी भी अनन्यता थी, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी था। घनानंद के अभूतपूर्व प्रेम की अभिव्यक्ति परंपरा से जो प्राप्त काव्य भाषा में नहीं हो सकती थी, उनकी दृष्टि में भाषा ऐसा वस्त्र है जो श्वास के धागों से बुना हुआ है, अनुराग के रंग में रंगा हुआ है। अनुराग के रंग में रंगे वे और भी वस्त्र थे, भक्तों के, सूफियों के, प्रेमी कवियों के, पर घनानंद के वस्त्र का विन्यास श्वास के ताने बाने से निर्मित हुआ था। इस नवीन विन्यास के कारण अन्य कवियों की भाषा से उनकी भाषा में गुणात्मक अंतर आ गया है। इसके लिए उन्होंने लक्षणा का सहारा लिया और भाषा की लक्षक और व्यंजक सीमा की तलाश की। लक्षणा के प्रयोग की यह विलक्षणता फिर छायावादी काव्य में ही देखी गई। काव्यशास्त्रीय लक्षणा और व्यंजना के होने से ही कोई रचना काव्य कोटि में नहीं गिनी जा सकती। उनकी सार्थकता भावों को रमणीय रूप में प्रस्तुत करने में है। उदाहरण लीजिए, पहला, लड़कानी की आनी परी छलक है। दूसरा, अलबेली सुजान के कौतुक पै इतरिझी इकोसी हुए लाज थके। तीसरा, जिन आखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी नित निरही जागनी है। चौथा, कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। उनकी लक्षणा के मूल में जो वक्रता दिखाई देती है वह अनुभूति जन्य होने के कारण स्वाभाविक है तथा व्यक्तिकता के रंग में रंगी होने के कारण उनकी अपनी है। विशेषणों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग में बिहारी और घनानंद के भाषा भेद को देखा जा सकता है। आंख के कुछ विशेषणों को देखिए। बिहारी के बंक विलोकनी, अनियारे नयन, अहेरी नयन, ललचौही चखनी, लगौहे नयन आदि। घनानंद के आँख के कुछ विशेषण देखिए। त्रिसित चखनी, अखियाँ निपेटनी, अखियाँ दुखदाई आदि। बिहारी के विशेषण विषय से संबद्ध है तो घनानंद के विषयी से, अर्थात पहला वस्तुनिष्ठ है, दूसरा विषयनिष्ठ। मुहावरों और लोकोक्तियों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। सारांश यह कि बिहारी की भाषा प्रचलित साहित्यिक भाषा है, उसे परिनिष्ठित और प्रांजल कहा जाएगा, लेकिन उसमें कल्पना को प्रेषित करने की शक्ति नहीं है, गहन मानवीय अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। उनकी भाषा में परिचित और स्वीकृत मान्यताओं की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन घनानंद के सामने अपनी निजी अनुभूति को प्रकाशित करने की समस्या थी। परंपरा से प्राप्त भाषा मौन को मुखर करती है, किंतु अनुवेश भाषा मौन मधि पुकार को उजागर करती है। और यहां बिहारी और घनानंद शीर्षक समाप्त होता है।